दिन भर तारीख 13 जुलाई दिन बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। नागपुर में स्कूटी की डिक्की में गौमांस ले जाने की आशंका में कल एक व्यक्ति को पीटे जाने की घटना में चार गिरफ्तार।
मांस मिला है, मांस किस चीज का है वो अभी असर्टेन नहीं हुआ है और इसके लिए उसको सील करके फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को भेजा गया है, उसका रिपोर्ट अभी आना बाकी है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरिद्वार व उन्नाव के बीच गंगा किनारे 500 मीटर तक कूड़ा फेंके जाने पर लगाई पाबंदी, पर्यावरणविद MC मेहता।
मैं तो पूरी आशा है कि अगर भारत सरकार जो है वो इसके लिए पूरी तरह से अगर वो समझना चाहती है कि गंगा जी के बिना जो है वो हमारा देश जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमारी ये सभ्यता का एक हिस्सा है।
जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई की बरसी को मनाते हैं अलगाववादी भारत समर्थक दोनों, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, हरिता कांडपाल से। महाराष्ट्र के नागपुर में कथित तौर पर गौमांस रखने के शक में एक शख्स को बुरी तरह पीटने के मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। जिस शख्स की पिटाई की गई वो अस्पताल में भर्ती है। उसका कहना है कि पिटाई करने वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। उसका कहना है कि उसके पास गौमांस नहीं था। पकड़े गए लोगों को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीच गंगा नदी के किनारे 100 मीटर की दूरी तक नो डेवलपमेंट जोन स्थापित करने का आदेश दिया है। NGT ने कहा कि गंगा के किनारे पर 500 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह का कूड़ा नहीं फेंकने का आदेश दिया जाए। इसके अलावा गंगा नदी में कचरा डालने पर 50,000 का पर्यावरण मुआवजा लगाने की भी सिफारिश की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों को गंगा के घाटों पर होने वाले धार्मिक कार्यों के लिए गाइडलाइंस बनाने को भी कहा गया है। रूस में सैन्य अदालत ने रूस के विपक्षी नेता बोरिस नेम्त्सोव की हत्या के मामले में चेचन गैंग के प्रमुख जोर दादाएव को 20 साल की सजा सुनाई है। जोर दादाएव चेचनिया के बाहुबली नेता माने जाने वाले रमजान कादिरोव के तहत एक विशेष सैनिक दस्ते का सदस्य रहे हैं। उनके चार साथियों को भी सैन्य अदालत ने सजा सुनाई है, जबकि रूसी विपक्षी नेता बोरिस नेम्त्सोव के परिवार का मानना है कि उनकी हत्या रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय के इशारे पर की गई है, जबकि रूस की सरकार इससे इनकार करती रही है। उनकी हत्या 2015 में क्रेमलिन के आसपास की गई थी। बोरिस नेम्त्सोव के वकील वादिम प्रोखरोव का कहना है, हत्या की योजना बनाने वाले और करवाने वाले अभी तक कानून की पकड़ से दूर हैं। बोरिस की बेटी जाना नेम्त्सोव के प्रतिनिधि के तौर पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हत्या की योजना बनाने वाले और हत्या करवाने वालों पर मुकदमा चले और उन्हें बड़ी से बड़ी सजा मिले। ये थे वादिम प्रोखरोव के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। पाकिस्तान में सत्तारूढ़ PMLN सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने एक आपात कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का समर्थन किया है। अघोषित आय के मामले में सोमवार को पाकिस्तान में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट में नवाज शरीफ और उनके परिवार की संपत्तियों और खर्च पर सवाल खड़े किए गए थे। विपक्षी दल नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। JIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि शरीफ परिवार का खर्च उनकी आय से ज्यादा है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ पर भी कई सवाल खड़े किए गए थे। अमेरिका की अपील के बावजूद उत्तर कोरिया और चीन के बीच व्यापार बढ़ गया है। अमेरिका ने चीन से उत्तर कोरिया से व्यापारिक रिश्तों में कमी करने की अपील की थी। चीन के कस्टम विभाग के मुताबिक उत्तर कोरिया और चीन के बीच इस साल व्यापार में 10% की बढ़ोतरी हुई है। इसी महीने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन और उत्तर कोरिया के व्यापारिक रिश्तों की आलोचना की थी। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि इससे किसी भी तरह के प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं हुआ है। मैं एक बार और जोर देकर कहता हूं कि चीन पूरी तरह से और सख्ती से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को लागू करता रहा है, लेकिन सभी दलों में असमंजस है कि उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का अर्थ उस पर पूरी तरह से आर्थिक प्रतिबंध लगाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थे गेंग शुआंग के शब्द। चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता मानवाधिकार कार्यकर्ता लियू शियाबाओ का निधन हो गया है। वो 61 साल के थे और कैंसर के इलाज के लिए जेल से अस्पताल ले जाए गए थे। उन्हें एक ऑनलाइन याचिका में चीन को वन पार्टी स्टेट कहने पर 11 साल की सजा दी गई थी। उनके बीमार होने की खबर आने पर पश्चिमी देशों और मानवाधिकार संगठनों ने उन्हें इलाज के लिए विदेश भेजने की अपील की थी, लेकिन चीनी सरकार ने इससे इनकार किया था। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। आजकल बीफ का मुद्दा सिर उठाने लगता है। कई जगह पर मारपीट करने के कई मसले सामने आ चुके हैं, यहां तक कि कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। पीट पीट कर हत्या किए जाने के मामले में दादरी के अखलाक, राजस्थान के पहलू खान और हरियाणा के जुनैद का नाम शामिल है। ताजा मामला नागपुर का है, जहां कल सलीम इस्माइल शाह नाम के एक व्यक्ति को उसकी स्कूटी की डिक्की में गोमांस ले जाने के शक में कुछ लोगों ने इसे पीट दिया। ऐसे लोगों पर प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून को एक चेतावनी दी थी, लेकिन उस अपील का भी असर नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने गौरक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे लोगों को चेतावनी दी थी। इससे पहले कि हम नागपुर की घटना का जिक्र करें, आपको प्रधानमंत्री मोदी की 29 जून को दिए गए भाषण की आवाज सुनाते हैं।
हम कैसे आपात हो रहे हैं, डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें।
प्रधानमंत्री मोदी की आवाज आप सुन रहे थे। नागपुर की इस घटना का वीडियो वायरल हो चुका है और वीडियो में एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है, लोग सिर्फ देख रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जानकारी के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक शैलेश बालवड़े से।
ये जो मामला है, ये जलालखेड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक बारासिंगी करके विलेज है, उसके बस स्टॉप के बाहर एक सलीम इस्माइल शेख शाह करके बंदा है, उसको गाड़ी रोक के 3-4 लोगों ने उसको गाड़ी से उतार के उसको मारा पिटाई की है लाठों से। और उसके बाद जब पुलिस स्टेशन को ये मामला पता, फोन आ गया 100 नंबर पे, तो पुलिस स्टेशन का स्टाफ वहां 10 मिनट में पहुंच के उस बंदे को रेस्क्यू किया गया।
तो अभी उसकी हालत कैसी है, जो सलीम जो आप नाम बता रहे हैं उसकी हालत कैसी है?
नहीं, ही स्टेबल, उसने उसका स्टेटमेंट भी उसने दिया है कि ही स्टेबल, पुलिस हैज हेल्प्ड हिम, बाकी ही इज नॉट क्रिटिकल, ही स्टेबल, और उसको 3 स्टिचेस पड़े हैं।
ये जो जा रहे थे सलीम, क्या इनकी स्कूटी थी और उसमें क्या बरामद हुआ?
ये एक्टिवा से जा रहे थे और इनके एक्टिवा में कुछ मास मिला है। मास किस चीज का है वो अभी असर्टेन नहीं हुआ है, और इसके लिए उसको सील करके एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा गया है, उसका रिपोर्ट अभी आना बाकी है, के बाद आगे की एक्शन ली जाएगी।
इस तरह के मामले आजकल पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहे हैं, तो पुलिस ने इस मामले में क्या किया है? कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है?
नहीं, ये मामला थोड़ा सा अलग है। ये मामले में जो एक्यूज्ड है वो लोकल है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए नहीं है, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, उस मामले को पूरी तफ्तीश में जा रहे हैं हम कि ये कि मोटिव क्या था ये पूरा करने में, नंबर वन। नंबर टू, इस टाइप से मामला फिर से ना हो डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए वी हैव कम डाउन वेरी हेविली, वी हैव अप्लाइड, हमने बहुत स्ट्रिक्ट जो सेक्शन है वो लगाए हैं, और उसमें पुलिस कस्टडी हमारी तफ्तीश जो हमने की एक दिन में, और जो एविडेंसेस कोर्ट के सामने लेके आए थे और जो सेक्शंस लगाए थे, उसकी वजह से हमें पुलिस कस्टडी रिमांड भी उन लोगों की मिल गई है 5 दिन के लिए।
तो कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है?
जो FIR में दिया था उसमें 3-4 लोग उसने बताया थे, चारों जो मेन आरोपी जो हमने क्लिप में देख के, उनको पहले अननोन पर्सन के खिलाफ पुनः दाखिल हुआ था, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनका नाम पता करा के उनको कल अरेस्ट किया गया है, 4 लोग अरेस्ट है।
ये थे नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक शैलेश बालवड़े। सीधे कार्यक्रम में रुख करते हैं नागपुर का, जहां पर हमारे सहयोगी संजय रमाकांत तिवारी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। संजय, ये घटना कल की है, गिरफ्तारियां भी हो गई, आज पुलिस को उनकी रिमांड भी मिल गई, इस घटना के बाद किस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां हैं नागपुर में?
मोना जी, मैं ये बता दूं कि ये जो 4 लोग पकड़े गए हैं और 5 दिनों के लिए अंदर आए हैं, इनको एक फ्रिंज, किसानों का एक फ्रिंज ग्रुप है जो अचलपुर अमरावती के इंडिपेंडेंट MLA चलाते हैं, किसानों का ग्रुप है, उससे जुड़े हुए उसके पदाधिकारी हैं, ये कार्यकर्ता है, और वो उनका ये कहना है कि ये कई दिनों से इस तरह के काम कर रहा था, बीफ बिजनेस करता था, और हमने पुलिस को बताया, पुलिस ने कुछ किया नहीं, तो फिर हमने कानून हाथ में लिया। अब दूसरी तरफ गांव के लोगों का ये कहना है और पुलिस का भी ये कहना है कि ये लोग जो है ये शायद एक्सटॉर्शन, धन उगाही का काम करते हैं और टेररिस्ट करना चाहते थे। दोनों तरफ की बातें हैं, लेकिन मजेदार बात यह कि ये जो व्यक्ति है, जो विक्टिम है, ये BJP के माइनॉरिटी सेल जो है, अल्पसंख्यक मोर्चा, उसका बड़ा पदाधिकारी वहां का रह चुका है, उसके पास वैसे कार्ड है, अभी भी वो जनरल सेक्रेटरी काटोल तहसील का।
क्या इस बात की पुष्टि है कि ये जो आमुक व्यक्ति हैं, इनका इन संगठनों से ताल्लुक है?
जी, बीजेपी के पदाधिकारियों ने भी माना है कि हाँ ये काफी समय से हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी है, उसके पास मतलब से कार्ड भी है, आइडेंटिटी कार्ड भी है। लोगों का ये कहना है कि अपना राजनीतिक रसूख इस्तेमाल करता था बिजनेस के लिए, जबकि परिवार वालों का कहना है कि ये टेररिज कर रहे हैं धन उगाही के लिए। पुलिस देखेगी कि क्या मामला है, फिलहाल तनाव भरी शांति है।
तनाव भरी शांति है। बहुत बहुत शुक्रिया। नागपुर में हमारे सहयोगी संजय रमाकांत तिवारी बता रहे थे कि किस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां इस समय वहां पर इस घटना के बाद चल रही हैं।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर, और फेसबुक पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। संतोष सक्सेना ने मुझे नमस्कार भेजा है। पिंटू यादव का एक कमेंट है। दीपक लिख रहे हैं कि बीबीसी खबर अनेक और बीबीसी एक। सचिन कह रहे हैं कि बीबीसी की बात ही कुछ अलग है। आपके लगातार कमेंट हमें अपने फेसबुक पर दिखाई दे रहे हैं जो कि इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से इस कार्यक्रम को लगातार सुनते रहें। कार्यक्रम में अब बात करते हैं आज के फैसले की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरिद्वार और उन्नाव के बीच गंगा के किनारे 500 मीटर दूर तक कूड़ा फेंकने पर पाबंदी लगा दी है। अदालत ने कहा है कि नदी के पास बने चमड़े के कारखाने को वहां से दूर हटाया जाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाने समेत दूसरी परियोजनाओं को 2 साल में पूरा किया जाए, और जाजमऊ स्थित चमड़े के कारखाने को किसी उपयुक्त जगह पुनर्स्थापित किया जाए। हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा में कचरा डालने वालों पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाने का भी अदालत ने निर्देश दिया है। 1985 में पर्यावरणविद एमसी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में याचिका दायर की थी। 2014 में इस याचिका को एनजीटी हस्तांतरित कर दिया गया, और एनजीटी का ताज़ा फैसला उसी याचिका पर आया है। बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने पर्यावरणविद एमसी मेहता से फ़ोन पर बात की और पूछा कि इतने लंबे इंतज़ार के बाद आए फैसले से आप कितने संतुष्ट हैं।
नहीं देखिए, संतुष्ट तो हमें होना ही होगा, क्योंकि बात तो यह है कि डायरेक्शन तो हुई हैं, और इन डायरेक्शन का अगर सरकार वाकई जो है वो इसमें करना चाहती है कि गंगा जी जो है साफ हो पाए, तो तब तो ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है। एक रास्ता एनजीटी ने भी दिखाया है,
तो उसका असर होगा मेहता जी, असर होगा इसका? आपको उम्मीद कितनी है कि असर होगा?
नहीं देखिए, मैंने आपसे ये कह रहा हूँ कि दुनिया जो है वो अब आशा के ऊपर है। हमें तो पूरी आशा है कि अगर भारत सरकार जो है वो इसके लिए पूरी तरह से अगर वो समझना चाहती है कि गंगा जी के बिना जो है वो हमारा देश जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमारी ये सभ्यता का एक हिस्सा है, और उसके साथ साथ लाइफ लाइन होने के नाते ये जो है वो सबसे जो पूजनीय जो नदी है देश में, तो अगर हम इसको एक नदी को हम जिसको नेशनल रिवर बनाया हुआ है, अगर हम इसको भी साफ नहीं कर पाएंगे, इसको जो क्लीन नहीं होगी, तो फिर हमारा जो है वो इतना बड़ा हम सोचने की बातें तो ये अधूरी है सारी।
कितना लंबा स्ट्रगल रहा है? आपके अलावा भी बहुत सारे पर्यावरणविद हैं, वो फिर मतलब पिटीशन डाले गए हैं, पैसे खर्च हुए हैं, प्रोजेक्ट्स बने हैं, मतलब मैं कहीं पढ़ रहा 7,000 करोड़ से ज्यादा तक रुपए खर्च हुए हैं, एनजीटी ने कहा है आज।
जो अथॉरिटीज हैं उनके अनुसार 7,000 करोड़ से ऊपर जो पैसा खर्च हुआ, और मेरे अनुसार तो और भी पैसे खर्च हुए हैं, लेकिन ये सारे का सारा जो जितने भी 7,000 करोड़ जो थे ये उन्होंने बिल्कुल वेस्ट किए हैं, क्योंकि उससे कोई क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो 10 किलोमीटर का भी जो गंगा जी जो है उसको साफ नहीं कर पाए। तो ये जो हालत हो गई है ये हमारा बिल्कुल जो है ये असफलता दिखाती है कि जो सरकारें जो 1985 के बाद से जो है वो बनती गई, और उन सरकारों ने जो तब राजीव गांधी से ये शुरू हुआ था, पहला जो गैप वन जो था गंगा एक्शन प्लान वन हुआ, उसके बाद जो दूसरा हुआ, और फिर अभी ये तीसरा चरण है इसका कि गंगा एक्शन प्लान तीसरे में है। तो ये दोनों के दोनों पहले विफल रहे हैं, और अभी भी जो है वो इस वक्त जो है वो ये कहा गया था कि ये हम जो है वो बहुत जल्दी जो है वो हम कर लेंगे वो करेंगे, लेकिन उसका जो है वो हो नहीं पाया कुछ भी। तो मेरा ये कहने का है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी इसमें, और फिर एग्जेक्टिव विल नहीं होगी, तब तक जो है वो बहुत मुश्किल है। गंगा जी में इतनी ज्यादा जो जल है वो इतना प्रदूषित हो गया कि आप उसको आचमन भी ना कर पाए, तो ये क्या, इसको हम क्या कहेंगे?
प्रदूषण है उसका, जो नदी के पास में लोग रहते हैं उन पर किस तरह का असर पड़ रहा है?
नहीं देखिए, नदी के पास क्या, जैसे कानपुर में तो बिल्कुल, और कितने पूरा गंगा बेसिन में जो है वो इतना ज्यादा जो खराबी हो गई है, तो उसको मैं पूरे का पूरा क्रोमियम आर्सेनिक सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सारे के सारा, और पूरी की पूरी बेल्ट जो वो कैंसर से रोगी हो गई है, मुरादाबाद और उसके सारे एरिया में जो कानपुर और नीचे की तरफ जो सब में कैंसर है और लोग जो पीड़ित हैं, और पीड़ित एक कैंसर से ही नहीं है बल्कि बाकी बीमारियों से भी पीड़ित हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि ऐसा हो रहा है देश के नागरिकों के साथ।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरिद्वार व उन्नाव के बीच गंगा किनारे 500 मीटर दूर तक कूड़ा फेंकने पर पाबंदी लगाई। ये थे पर्यावरणविद एमसी मेहता। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल की सजा काट रही एआईएडीएमके नेता शशिकला को बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कथित तौर पर वीआईपी सेवा देने का मामला सामने आया है। ये आरोप लगाने वाले और कोई नहीं बल्कि जेल की ही एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। डीआईजी जेल का दावा है कि शशिकला को वहां का स्टाफ वीआईपी ट्रीटमेंट देता है और इसके लिए उन्हें भारी रकम रिश्वत के तौर पर दी गई, लेकिन इन आरोपों का जेल के ही डीजीपी ने खंडन किया है। बेंगलुरु से हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम कहीं भी लग सकते हैं। अजीब बात यह है कि यह इल्ज़ाम उन्हीं पर लगाया जा रहा है जो भ्रष्टाचार के लिए जेल में वक्त बिता रहे हैं। बहरहाल मामला ये है, कर्नाटका जेल विभाग के डीआईजी डी रूपा ने राज्य के डीजीपी आर के दत्ता और डीजीपी जेल एच एन सत्यनारायण राव को एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि शशिकला को रसोई के लिए अलग व्यवस्था की गई है और इस सुविधा के लिए दावा किया जा रहा है कि कथित रूप से 2 करोड़ रुपए अधिकारियों को दिए गए हैं। डीजीपी सत्यनारायण राव अपने ही विभाग के डीआईजी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहते हैं, अगर उनके पास सबूत है तो वो साबित कर सकती हैं। हमें उनके सारे आरोप बेतुके हैं। शशिकला को किसी भी तरह की विशेष सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। उनको महिलाओं के बैरक में ही पहली माड़ी पर रखा गया है। संसद सदस्यों और मंत्रियों के अनुरोध के बावजूद 15 दिनों में एक शख्स से मिलने की इजाजत है। ये थे सत्यनारायण राव के शब्द। डीजीपी उनके इल्जाम को खारिज करने के बाद डीआईजी रूपा ने कहा,
ये किसी के खिलाफ नहीं है। एज डीआईजी मैं जब वहाँ गई थी जो मुझे दिखाया गया, जो मैंने देखा, व्हाटएवर आई सॉ, उसको मैंने रिपोर्ट के तौर पे लिख के भेज दिया है। माय पर्पस इज दैट सिस्टम शुड इम्प्रूव और जो लैप्सेस है वो रेक्टिफाई किया जाए, बस उतना ही है। मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। अगर मेरे रिपोर्ट में कुछ उनको किसी को भी सत्य नहीं दिखता तो लेट देयर बी अ डिटेल्ड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी। मैं रिपोर्ट के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो सही भी नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से।
शशिकला के मामले के अलावा रूपा दूसरे इल्जाम भी लगाती हैं। बहरहाल कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ट्वीट किया कि एक ऊंच स्तर की जांच की जाएगी। जाहिर है कि चुनाव के साल में सिद्धरामैया जांच के आदेश बहुत जल्दी देने ही थे और उन्होंने ऐसा किया भी। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
अगर आप इस खबर को पढ़ना चाहते हैं तो आप bbchindi.com पर पढ़ सकते हैं। शीर्षक है, शशिकला पर आरोप, 2 करोड़ में खरीदी जेल की सुविधाएं। इस खबर को पढ़ने के लिए bbchindi.com पर आइए।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
एक बार फिर से बता दूं, आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। जम्मू कश्मीर में हर साल 13 जुलाई को बरसी मनाई जाती है। इस बरसी को अलगाववादी तो मनाते ही हैं, साथ ही भारत समर्थक लोग और राजनीतिक दल भी मनाते हैं। सवाल है कि आखिरकार 13 जुलाई क्यों महत्वपूर्ण है जिसे कि दोनों ही मनाते हैं। सुनिए श्रीनगर से हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर की इस रिपोर्ट में।
13 जुलाई 1931 का दिन कश्मीर में हर साल उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्हें साल 1931 के दिन डोगरा सेना ने श्रीनगर के सेंट्रल जेल के बाहर गोलियों से उनके सीने छलनी कर दिए थे। फायरिंग की उस घटना में 22 लोग मारे गए थे जिन्होंने डोगरा राज के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। उन लोगों को 13 जुलाई के शहीद भी कहा जाता है। 13 जुलाई की बरसी को न सिर्फ कश्मीर के अलगाववादी मनाते हैं बल्कि कश्मीर के भारत नवाज राजनीतिक दल भी उस दिन उन लोगों की कब्रों पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अलगाववादी हर साल 13 जुलाई को कश्मीर बंद बुलाते हैं। 13 जुलाई को मारे गए उन 22 लोगों के लिए श्रीनगर के नक्शबंद इलाके में अलग से एक कब्रिस्तान बनाया गया है जिससे मजार शहदा यानी शहीदों का मजार के नाम से जाना जाता है। जानकार मानते हैं कि कश्मीरी जनता को उस जमाने में 1846 से लेकर 1921 31 यानी 80 साल तक राजनीतिक और इंसानी अधिकारों से अमृतसर मुआहदे की वजह से महरूम किया गया था। इसी हवाले से कश्मीर के जाने माने लेखक और राजनीतिक विश्लेषक पीजी रसूल कहते हैं,
इसको सरकारी तौर पर भी हिंदू रियासत करार दिया गया था, जिसमें मुसलमानों के हुकूक यकसर खारिज किए गए थे। वो तमाम जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी से महरूम कर दिए गए थे, क्योंकि उस सब का उसूली और कानूनी मालिक हिंदू महाराजा डोगरा खानदान बन चुका था। इस सिलसिले में काफी अरसे से जो जद्दोजहद चल रही थी, उसका एक उबाल 13 जुलाई 1931 को देखने को मिला।
तहम अलगावादियों को इस दिन 13 जुलाई को घरों में नजर बंद कर दिया जाता है। जानकार कहते हैं कि दरअसल अलगावादियों को मारे गए लोगों के कब्रिस्तान पर जाने से रोकने की वजह यह है कि सरकार और दूसरे भारत नवाज राजनीतिक दल इसका पूरा क्रेडिट अपने खाते में डालना चाहते हैं। पीजी रसूल कहते हैं,
ये सरकार इस दिन पर एक मोनोपोली बनाना चाहती है, क्योंकि ये एक जबरदस्त अखलाकी लेजिटिमेसी ये तहरीक रखती है। वो इस पर कब्जा करना चाहते थे, वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम ही उन शोहदा के वारिस हैं।
आज भी अलगावादियों को इस मजार पर जाने से सरकार ने रोक दिया। अलगावादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने मजार पर जाने की कोशिश तो की, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर के बाहर ही रोक दिया। मीडिया को उन्होंने कहा,
आज हमने जो प्रोग्राम दिया था कि पुरामन तौर हम शोहदाए जम्मू कश्मीर खासकर 31 के शोहदा को खराज अकीदत अदा करने के लिए मजार शोहदा जाना चाहते हैं, कर्फ्यू का इतला किया गया है, पूरे शहर को जो है वो नाकाबंदी कर दी गई है, लोगों को घरों में मैसूर कर दिया गया है।
वही आज राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी 13 जुलाई को मारे गए उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा,
और एक खुशहाल जम्मू कश्मीर जिसमें कश्मीरियत हमारा बुनियादी जो हमारे उसूल है उनको याद रखना चाहिए।
विपक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा दूसरे भारत नवाज नेता भी श्रद्धांजलि अर्पित करने मजार शोहदा पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला से पत्रकारों ने जब पूछा कि पीडीपी की सहयोगी जमात बीजेपी के नेता यहाँ क्यों नहीं है, तो वो बोले,
डोगरा राज ने ये किया था, वो कैसे आएंगे, उनका वोट बैंक वहाँ है, ऑब्वियस है कि वो नहीं होंगे उनके साथ। गठबंधन जो है ये सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए और लूटने के लिए।
अलगावादियों के कश्मीर बंद काल के कारण कश्मीर में आज आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया। प्रशासन ने आज कई इलाकों में आम लोगों के चलने फिरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
और अब कार्यक्रम में बात करते हैं आपकी भेजी चिट्ठियों की।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और मेरे साथ हैं इंदु पांडे, हमेशा की तरह या कभी कभी की तरह
लेकिन नमस्कार हमेशा है मेरा।
हमेशा जी। तो मैं देख रहा हूँ कि चिट्ठियाँ आपके पास हैं, चिट्ठियों से शुरुआत करेंगे या ईमेल से?
पहले हम चिट्ठी लेते हैं
जी।
ये चिट्ठी है अभय कुमार निराला की, बगेन बक्सर बिहार से।
जी, क्या लिखते हैं?
लिखते हैं कि निखिल रंजन मोहन लाल के लिए दुनिया जहान बंद हो गया है।
निखिल रंजन और मोहन लाल के लिए?
हाँ, क्योंकि उसके बाद इनका कहना है कि बीबीसी हिंदी शाम की साप्ताहिक पत्रिका बुध एवं गुरुवार के दिन खाली ना हो, और इस बार आप विश्व के महान व्यक्ति या विज्ञान एवं विकास से कोई भी विशेष श्रृंखला शुरू कर सकते हैं।
विज्ञान एवं विकास की बात कर रहे हैं ये। लेकिन निराला साहब, ये आपसे किसने कह दिया कि दुनिया जहान बंद हो गया है? कतई बंद नहीं हुआ है, कुछ दिन के लिए ये रोका गया है कार्यक्रम। निखिल रंजन अब बीबीसी में नहीं है, मोहनलाल शर्मा इस कार्यक्रम को बनाते हैं, हमारे दूसरे जो साथी हैं वो बनाएंगे। ये कार्यक्रम बंद नहीं हुआ है, दोबारा शुरू होगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो दूसरी सलाह है उस पर तो हम अभी इस वक्त अमल नहीं कर सकते हैं। फिलहाल विवेचना है, इंडिया बोल है, दुनिया जहान है, और हमारे सभी कार्यक्रम हैं, खेल और खिलाड़ी है
जी। और ये ईमेल आया है देवानंद शर्मा का, गुड़गांव से। लिखते हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय विकलांग अधिकार एवं कर्तव्य मंच नई दिल्ली भारत आपकी इंडिया बोल कार्यक्रम में भाग लेना चाहता हूँ।
ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर हमें भेज दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको हम शामिल करेंगे।
और ये हमारे पास ये चिट्ठी आई है, और चिट्ठी को देखने से लग रहा है जैसे कि इसने काफी लंबा रास्ता
ऐसा
तय
लगता
किया
है। पिछली शताब्दी में चिट्ठी लिखी गई है
जी।
लगता है बारिश में भीग करके, आंधी तूफानों से गुजर के इनका खत हमारे पास पहुंच ही गया। ये प्रिंटेड लेटर हेड पे है, किन्होंने लिखी ये चिट्ठी?
ये एडवोकेट अशोक सिंह कुशवाहा है, तहसील कोट चुनार, जिला मिर्जापुर से। लिखते हैं कि बीबीसी के कारण तमाम उन बातों की जानकारी मिलती है जिसे सरकारी मीडिया तथा किराए की मीडिया सरकार के डर से शामिल नहीं करते।
किराए का मीडिया बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारी तारीफ की है। बहुत सारे श्रोताओं को लगता है कि बीबीसी तटस्थ है, बहुत सारे श्रोताओं को लगता है कि नहीं, हम तटस्थ नहीं हैं। तो हम ये तो जजमेंट आप पे छोड़ते हैं, हमारे लिए वो श्रोता भी के विचारों का भी स्वागत है जो कार्यक्रमों पर तनकीद करते हैं या आलोचना करते हैं, जो तारीफ करते हैं उनका भी स्वागत है।
ये हमारे पास मेल आया है एहसान असगर का बुलडाना महाराष्ट्र से, और ये कहते हैं कि ऐप से कोई भी कार्यक्रम प्ले नहीं हो रहा है, इस समस्या का
ये जो बीबीसी का ऐप है उसमें ये रेडियो कार्यक्रम नहीं सुन पाते, ऐसा हमारे कुछ श्रोता शिकायत कर रहे हैं। मैंने आने से पहले, अभी इंदु जी स्टूडियो में आने से पहले, लंदन में एक ईमेल भेजा, उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या लोकल कोई कनेक्टिविटी की समस्या तो नहीं है, वो पहले पता करें। हमारे स्तर पर अगर कोई गलती हुई होगी टेक्निकल, तो जिन सज्जन को मैंने मेल लिखा है वो इसको दुरुस्त करेंगे।
ये पोस्ट कार्ड है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का, अर्जुन सिंह भदौरिया, ग्राम कैथनपुरवा, सातनपुरवा, अमेठी से।
ये पोस्ट कार्ड कई बार लिखते हैं, कुछ बार हम इस्तेमाल कर पाते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते हैं। तो आज क्या लिखा है इन्होंने?
आज इन्होंने बीबीसी के बहुत सारे लोगों का नाम लिया है जिसमें मैं और आप शामिल हैं, और सबके साथ सिर्फ एक शब्द है, अच्छा है।
अच्छा है, लेकिन प्रमोद कुमार श्रीवास्तव हमारे प्रखर आलोचक भी हैं, अगर इनको कोई कार्यक्रम पसंद नहीं आता है तो तुरंत मेरे पास SMS आ जाता है कि ये कार्यक्रम हमें पसंद नहीं आया, लेकिन बिला नागा बिल्कुल रूटीन के हिसाब से रोजाना ये कार्यक्रम सुन के हमें मैसेज भेजते हैं,
तो ये तो अच्छी बात है। गणेश प्रसाद हौजदार हैं, लिखते हैं कि राष्ट्रहित के लिए बेगूसराय के अनवर बने आनंद शीर्षक पर खबर पढ़ने को मिली, उन्हें मेरी तरफ से हार्दिक बधाई।
खबर पढ़ने को ही नहीं बल्कि मनीष शांडिल्य ने रेडियो पर भी ये रिपोर्ट प्रसारित की थी, तो हम इस तरह की चीजें प्रसारित करते रहते हैं। यानी मैं बार बार कहता हूँ गणेश प्रसाद हौजदार साहब की, हमारे समाज में जो कुछ हो रहा होता है बीबीसी रेडियो से हम उसको परावर्तित करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, अपनी तरफ से न नमक लगाते हैं न मिर्च लगाते हैं, तो ये तो रिजल्ट आपके सामने है।
ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास मेल आया है अभिनय श्रेष्ठ का, इनका कहना है कि जो भी आप समाचार लें तो उसके दोनों पहलुओं को लें तो बहुत अच्छा रहेगा।
यही तो हम कोशिश करते हैं और यही बीबीसी में हमारी जिम्मेदारी है कि एक खबर का सिर्फ एक पक्ष प्रस्तुत न करें बल्कि दोनों पक्ष प्रस्तुत करें। लेकिन किसी खास खबर के बारे में कह रहे हैं क्या?
ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो सोसाइटी में है, उसके ऊपर जो प्रोग्राम होते हैं हमारे यहाँ पे, तो उनका कहना ये है कि बीबीसी करता है लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग दोनों सिक्के के दोनों पहलुओं को जानें।
बिल्कुल दुरुस्त बात है, एकदम ठीक कह रहे हैं। ये शायद गोरखालैंड के बारे में कुछ कह रहे हैं क्या?
गोरखालैंड के बारे में भी इनका यही कहना है, और वहाँ कहते हैं कि बहुत सारे लोग मारे गए और मीडिया ने इस चीज को मतलब पावरफुली बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया।
हाँ किया, लेकिन मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे संवाददाता पहले वहां पहुंचे, रवि प्रसाद को हमने भेजा था वहां पे, तो वहां से जो स्थितियां थी वो हम लगातार रिपोर्ट करते आ रहे थे अपनी वेबसाइट पर भी और रेडियो पर भी। तो आप सहयोग बनाए रखें, हमें लगता है कि अब समय थोड़ा कम है इसलिए मैं चलते चलते पता बता दूं, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003। अगर ईमेल भेजना चाहें तो पता नोट कीजिए, hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
तो आपने अपनी चिट्ठियां सुन ली और अब कार्यक्रम में बात करेंगे खेल समाचारों की। इंदु पांडे अभी चिट्ठियां सुना रही थी, श्रोताओं की चिट्ठियां सुना रही थी और अब खेल समाचार सुनाएंगी। तो इंदु, विंबलडन में क्या चल रहा है?
विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। अमेरिका की वीनस विलियम्स का सामना ब्रिटेन की जोहाना कोंटा से होगा। 1973 के बाद ये पहली महिला खिलाड़ी हैं यूके की जो सेमीफाइनल में पहुंची हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में गाबरीन मुगुरोजा और मैग्डालना राई बारिकोवा आमने सामने होंगी। क्वार्टर फाइनल में गाबरीन ने रूस की स्वितलाना कुजनेत्सोवा और मैग्डालना ने कोको वांडेवे को हराया। टूर्नामेंट में एकमात्र भारतीय रोहन बोपन्ना आज मिक्स डबल्स का क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगे। बोपन्ना और कनाडा के उनकी जोड़ीदार गैब्रियला दाबरोस्की का सामना फिनलैंड की हेनरा कॉन्टिनेंट और ब्रिटेन के हैदर वॉटसन से होगा। और अगर हम बात करें महिला क्रिकेट की, तो भारत को हराकर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। भारत के पास अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका है, अगर वो 15 जुलाई को न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब रही या फिर बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ।
बहुत बहुत शुक्रिया इंदु पांडे, और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। चीन के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता
मानवाधिकार कार्यकर्ता लियू शेबाओ का निधन हो गया है। वो 61 साल के थे। कैंसर के इलाज के लिए जेल से अस्पताल ले जाए गए थे। अमरीका की अपील के बावजूद उत्तर कोरिया और चीन के बीच व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इस साल चीन और उत्तर कोरिया के बीच व्यापार में 10% की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर में कथित तौर पर गौमांस रखने के शक में एक शख्स को बुरी तरह पीटने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे तिलकराज भाटिया। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।